सफ़र को वसीले ज़फ़र भी कहा गया है, यानी इससे फतह व कामरानी हासिल होती है। जब कोई शख्स अपने माहौल को छोड़कर दीगर मकामात का सफ़र इख्तियार करता है तो वह मुख्तलिफ इलाक़ों, लोगों और ज़बानों से वाकफियत हासिल करता है। आबो हवा, रहन सहन और ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े और तहजीब व तमद्दुन के फ़र्क को देख कर इसकी फ़िक्र नज़र में कुशादगी पैदा होती है। सफ़रनामा नसरी अदब की एक सनफ है। अच्छे सफ़रनामे पढ़कर हम महसूस करते हैं कि हम मुसन्निफ़ के साथ सफ़र कर रहे हैं और इसके तजुर्बात व मुशाहदात से लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे हैं। आज हम ऐसा ही एक सफ़रनामा जिसे परवीन शेर ने तहरीर किया है वो सुनने वाले हैं। परवीन शेर पटना के एक इल्मी घराने में पैदा हुई। आला तालीम उन्होंने कनाडा में हासिल की। उन्होंने इसी मुल्क की शहरियत हासिल कर ली और फ़िलहाल वहीं मुखीम हैं। शायरी के अलावा परवीन शेर ने मुसव्वरी में भी खूब नाम कमाया है। उन्हें इस फन में बैनुल अख्वामी सतह के कई इनामात मिल चुके हैं। उन्हें मौसीकी और सयाहत से भी खासा लगाव रहा है। उनका सफ़रनामा चंद सीपियां समंदरों से उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में शाये हुआ। किरचियां, निहाल दिल पर सुहाब जैसे और चेहरा गुल धुआं धुआं सा उनके शेरी मजमूए हैं। तो आइए सुनते हैं सियाह रोशनी, परवीन शेर के ज़रिए लिखा हुआ। तैयारा अपनी आहिनी परों को फैलाए ज़मीन के सपाट सीने पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। रफ्ता रफ्ता इसकी रफ्तार तेज़ हो रही थी। फिर दूर तक फैले हुए रनवे से एक लंबी जस्त लगाकर वो फ़ज़ा में प्रवास करने लगा। ऊपर और ऊपर ज़मीन दूर होती जा रही थी और छोटी। परवीन अपनी सीट पर सर टिकाए हुए इतनी बड़ी ज़मीन को इतनी छोटी होते हुए देख रही थी। वो ज़मीन जिस पर इंसानी वजूद एक ज़र्रा है, वही अब खुद ज़र्रा बनती जा रही थी। तैयारा बादलों का नर्म सीना चीरता हुआ बुलंद होता जा रहा था। बादलों के समंदर में डूबकर ज़मीन लापता हो गई थी, जिससे दूर ये एक नया जहां था। ये खलाओं का जहां था, पुरअसरार, खामोश, आवाज़ों की गूंज जिसे परवीन सुन रही थी। ज़मीन से दूर इस नए जहान में आकर दिल की अजीब कैफियत थी जिसका कोई नाम न था। एक अनोखा एहसास था, एक तिफलाना ख्वाहिश थी खिड़की से बादलों की आगोश में कूद जाने की। आज वो तैयारे में उड़ रही थी और ज़मीन के इस हिस्से पर कदम रखने जा रही थी जिसे इसने सिर्फ तस्वीरों में देखा था, जहाँ की सच्ची कहानियाँ किताबों में पढ़ी थी, जहाँ का माजी इबरतनाक था, जहाँ इंसानों ने इंसानों पर जुल्म ढाए थे, जहाँ इंसानियत मुँह छुपाए सिसक रही थी और बर्बरियत मुस्कुरा रही थी। परवीन ख्यालात के समंदर में गोते लगा रही थी, डूब रही थी, उभर रही थी। जोहानसबर्ग पहुँचने में 10 घंटे बाकी थे। परवीन के शरीक हयात वारिस और बेटे फराज की आंखें नींद में डूबी हुई थी। परवीन की पलकें भी भोझल हो रही थी। जब इसकी आंखें खुली तो मंजिल करीब थी। तैयारा नीचे उतर रहा था, ज़मीन करीब आ रही थी। लकीरों पर रेंगती चूटियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बन रही थीं। छोटी छोटी डिब्बियाँ आलीशान इमारतों में तब्दील हो रही थीं। ज़मीन का सीना फैलता जा रहा था और परवीन के दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थीं। वो उस सरज़मीन पर कदम रखने वाली थी जहाँ की मिट्टी के ज़र्रे ज़र्रे में माजी की दुख भरी कहानियाँ हैं। वो सरज़मीन जिसे कहा जाता है कि एक मुल्क में एक दुनिया आबाद है। तैयारे ने ज़मीन को छू लिया था। सुबह का सूरज अपनी नर्म सुनहरी किरणों की चादर जोहानसबर्ग पर फैलाए हुए था। आज परवीन के कदम इस सरजमीन पर थी जहाँ कितनी ही यादों की बाजगश्त थी। वो ख्यालों में गुम, तजस्सुस और हैरानी में डूबी हुई थी कि अचानक एक मुनहनी सा आदमी एक झंडी जिस पर शेर फैमिली दर्ज था लहराता नजर आया। फराज इसकी तरफ बढ़ा और उस शख्स ने खुश आमदीद कहकर अपना तारुफ कराया। वो नर्म गुफ्तार खुश मिजाज केनियन था, परवीन ग्रुप के सयाहों का रहबर, सीधा साधा, नेक और नर्म दिल। न्यूयॉर्क या शिकागो में काले लोगों का खौफ दिल और दिमाग पर मुसल्लत रहता है। लोग इस इलाके में भी नहीं जाते जहां इनकी अक्सरियत होती है, लेकिन अब इसे इस खौफ पर हंसी आ रही थी। कीनियन की शख्सियत और इर्द गिर्द कालों का जम गफीर इनके चेहरे बता रहे थे कि तमाम इंसान बुनियादी तौर पर यकसा हैं। कोई पैदायशी मुजरिम नहीं होता, कातिल नहीं होता, बल्कि हालात का शिकार होता है। किनियन के साथ इसके ग्रुप के 11 सयाह वैन में बैठ गए थे। वैन जोहानसबर्ग की सड़कों पर दौड़ रही थी। होटल वांडर रिस्की की तरफ किनियन हाथ में माइक पकड़कर अगली सीट पर बैठा हुआ था। इसकी आवाज़ वैन में गूंज रही थी। वो कह रहा था, जोहानसबर्ग में साउथ अफ्रीका का सबसे पुराना स्कूल है जो 1895 सन ईस्वी में तामीर हुआ था। नेल्सन मंडेला के दो मकानात यहीं हैं। वैन में बैठे हुए सहिया केनियन से सवालात कर रहे थे और वो जवाब दे रहा था। जोहानसबर्ग में सोने की कान का पता जॉर्ज वॉकर और जॉर्ज ब्रेसन ने लगाया था। साउथ अफ्रीका कुदरती वसाइल की वजह से दौलतमंद हो गया, क्योंकि यहाँ सोने और हीरे के ज़खायर हैं। यहाँ गोरों की आबादी 10% है। यहाँ मौसम सरमा जुलाई से शुरू हो जाता है, केनियन बोलता जा रहा था। परवीन वैन की खिड़की से बाहर देख रही थी, मकई के खेत के रंगों से सुरूर हासिल कर रही थी और केनियन की आवाज़ से इल्म के मोती चुन रही थी। स्वेटेव की सड़कों पर सुबह की नर्म धूप अपने सुनहरे परों को फैलाए बैठी थी। सड़क के किनारे रंग ही रंग थे। छोटे छोटे स्टॉलों में फनकारों के फन चमक रहे थे। मुजस्मे और क्राफ्ट, मुसव्वरी और रंगीन पोशाक, फुटपाथ पर भी चादरों पर तरह तरह की अशिया बराए फरोख्त मौजूद थीं। लोग मोलतोल कर रहे थे। परवीन इस दुकानदार औरत की बेबसी को देख रही थी, जिसे अपनी बखा के लिए कीमत कम करनी ही थी। वैन का ड्राइवर योपा था। उसने वैन स्वेटो के एक मफलूकुल हाल इलाके में रोक दी थी। सब सैया बाहर निकलकर केनियन के पीछे पीछे चल रहे थे। गर्द गुबार में डूबी हुई कच्ची सड़कें, तंग गलियां, बदरंग छोटे छोटे घर, कहीं गढ़ों में पानी जमा हुआ पानी, नंगे पांव बोसीदा कपड़ों में खेलते हुए बच्चे, घर के दरवाज़ों पर बैठे चाय पीते हुए गपशप में मसरूफ़ लोग, जिन्हें ज़िंदगी की दौड़ से कोई मतलब न था। मकानों के सामने तारों की जंग आलूद बाढ़ और हर घर पर टीन की छत। ये इलाका जोहानसबर्ग से 20 मील दूर है। इसे स्वेटो कहते हैं। अपार्थाइड के दौरान कालों को इसी जगह भेज दिया गया था। स्वेटो का माहौल और कच्चे रास्ते और गलियों से उड़ती हुई गर्द के ज़र्रे कह रहे थे कि किस तरह वो मुल्क दर्द का गहवारा बना था। गली की धूल परवीन के कदमों से लिपट रही थी और वो सोच रही थी कि सियाहत सिर्फ जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन नहीं, खुरदुरी बदसूरती की आगाही का नाम भी है। सियाहत सिर्फ जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन नहीं खुरदुरी बदसूरती की आगही का नाम भी है। सयाहों ने स्वेटो में एक गरीब खानदान के खस्ता हाल दो कमरों के मकान को भी देखा, जिसके दौरे दीवार बदहाल थे, जिनका रंग उड़ा हुआ था, कमज़ोर सितरों पर टिन की छत टिकी हुई थी। एक बाथरूम सहन में था, जिसे हमसाये भी इस्तेमाल करते थे। दो कमरों के इस घर में 9 अफराद रह रहे थे। एक छोटे कमरे में बिस्तर और मेज़ के दरमियान चलने की जगह भी नहीं थी। छोटी सी खिड़की से रोशनी भी सहमी हुई सी अंदर आ रही थी। एक कमरा ज़ईफ बाप का था, नीम रोशन छोटा सा पुराना बिस्तर और छोटी सी रंग उड़ी हुई मेज़ थी। इस कमरे के एक कोने में बोसीदा कुर्सी पर एक नौ उम्र लड़की बैठी हुई कोई रिसाला पढ़ रही थी। उस लड़की के चेहरे पर परवीन ने बेजारी के आसार देख लिए थे। उसकी आंखों में उसने खुददारी की परछाइयां भी देख ली थीं। लड़की के नौ उम्र खून में गम और गुस्से की लहरें नज़र आ रही थी। परवीन का दिल इस बेजार लड़की से बहुत सारी बातें करना चाहता था। वो लड़की के करीब चली गई, सवाल किया, क्या तुम यहीं रहती हो? उसने बहुत रूखा सा जवाब दिया, यकीनन। शायद इस नौजवान लड़की को, जो सिर्फ 16 साल की थी, अपने वजूद, अपने ख़ानदान और अपने घर को नुमाइश का सामान बनाए जाने का शिद्दत से एहसास था। सयाहों के लिए इनकी खस्ता हाली, इनकी बेबसी एक तफरी बन गई थी। दस्तूर ये था कि सयाह हमेशा इस घर की गुरबत का नज़ारा करके उन्हें कुछ उजरत देते थे, जिससे घर के अफराद को खाना नसीब होता था। तमाम सयाह बेनियाजी से इस घर के रहने वालों की कठिन ज़िंदगी को तफरीही नज़रों से देखकर बाहर निकल गए थे, कुछ पैसे देकर, जो एक रस्म थी, मगर ज़िंदगी के ये तजादात परवीन के लिए मामा थे। सब सयाह इस घर से यूं बाहर निकल आए जैसे कोई दिलचस्प फिल्म देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकले हों। नंगे पांव और फटे पुराने कपड़ों में मासूम बच्चे भी सयाहों के पीछे पीछे चल रहे थे। शायद इनके लिए ये लोग अजूबा थे। एक बच्चा तकरीबन 7 साल का फराज के करीब आया और उसने बिला झिझक फराज से बातें शुरू कर दी। वो फराज के पेशे के बारे में पूछ रहा था। कच्चे जहन के पुख्ता सवाल ने परवीन को हैरान कर दिया था। फिर इस लड़के ने कहा कि मैं वकील बनना चाहता हूँ। परवीन इस मासूम के ख्वाब के मुतालिक सुनकर हैरतज़दा थी, कुछ उदास भी। अब तकरीबन 20 बच्चों का झुंड सयाहों के साथ साथ चल रहा था। केनियन से इजाज़त लेकर परवीन ने इन बच्चों के लिए चॉकलेट और खिलौने खरीदे। वो बारी बारी इनमें सौगात बांट रही थी। फराज ने इन बच्चों से बातें शुरू की तो एक झुंड चला आया इसके इर्द गिर्द, जैसे वो इनका पुराना दोस्त हो। परवीन की आंखें फराज की नरमी, रहमदिली और इंसानियत देखकर नम हो गई। फराज भी बच्चों को खिलौने और बिस्किट खरीद कर दे रहा था, वो इनका हीरो बन गया था। वारिस अपने बेटे को फख्र के साथ देख रहे थे। परवीन के लबों पर मुस्कुराहट थी और इसकी पलकें भीगी हुई थीं।